على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال لا يمسه إلا المطهرون. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لم يبدأ ببسم الله فهو أقطع أو أجزم، كما قال عليه الصلاة والسلام. جب بھی کوئی بندہ قرآن پاک پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے دو حکم آئے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ پاکی حاصل کرے، لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس قرآن کی خاصیت یہ ہے کہ پاک لوگوں کے سوا اس کو کوئی چھو نہیں سکتا، چھونے کی اجازت نہیں ہے. پاکی حاصل کرے. پاکی کے نام سے ہمارے ذہن میں فوراً وضو آتا ہے، بے شک یہ اس کی ایک بڑا جزیہ ہے، اس کی ایک بڑی فرع ہے. وضو کے ساتھ ساتھ پاکی کے اندر جو چیز داخل ہے وہ غسل بھی ہے. جس بندے کو غسل کی ضرورت ہے، وہ بندہ غسل کیے بغیر قرآن کریم نہیں پڑھ سکتا. جس بندے کو غسل کی ضرورت ہے، وہ بندی غسل کیے بغیر قرآن کریم نہیں پڑھ سکتی. یہ جو پہلا حکم ہے لا یمسہ الا المطہرون کا، اس حوالے سے اس زمانے میں تفسیر کرنے والی جو خواتین مشہور ہیں ان کی طرف سے ایک شوشہ چھوڑا گیا. بعض علماء بھی اس کی تائید کر دیتے ہیں یا اس کو تھوڑا سا ایزی لے لیتے ہیں، حالانکہ وہ ایزی لینے والی چیز نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جن خواتین کو غسل کی ضرورت ہو، جو ایسے دنوں میں ہیں کہ وہ نماز ان کی نہیں ہوتی ہے، ان دنوں میں تلاوت قرآن پاک بھی وہ نہیں کر سکتی. شیطان نے ایک شوشہ چھوڑا ان کے ذہنوں میں کہ بھئی اگر اتنے دنوں تک، 5 دن 7 دن 10 دنوں تک کوئی خاتون اگر قرآن کریم کو نہیں پڑھتی ہے اور وہ حفظ بھی کر رہی ہے، تو پھر قرآن کا یاد رکھنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا. ایک نیک نیتی کا شوشہ چھوڑا سامنے کیا اس کو. اس کے ذریعے سے پھر یہ حکم نکالا گیا کہ ایسی خواتین کو قرآن پڑھنے کی اجازت ہونا چاہیے. تو اب اس کے پیچھے جو نیک نیتی چھپی ہوئی ہے، کیا اس نیک نیتی کی وجہ سے قرآن کے صریح حکم کی خلاف ورزی کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ یہ ایک اہم سوال ہے. اس کی خلاف ورزی نہیں کی جا سکتی. یعنی اگر کوئی ایک اس نیک نیت کے ساتھ میں کہ میں قرآن بھول نہ جاؤں، مجھے قرآن کے پڑھنے میں پڑھانے میں دشواری اور مشکل نہ پیش آئے، اس نیک نیتی کے ساتھ میں کوئی غسل کی حالت میں یا جن دنوں نماز نہیں ہوتی ان حالتوں میں قرآن پڑھنا چاہے یا پڑھنے کی بات کرے یا اس کو جائز بتائے، تو پھر قرآن کی اس آیت کا کیا ہوگا جس میں یہ حکم ہے کہ قرآن کو پاک لوگوں کے سوا کوئی نہ چھوئے؟ جب ہم ہاتھ سے چھوتے ہیں تو پھر ڈائریکٹلی ٹچ کرنے والی بات آتی ہے. جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو قرآن کے لفظوں کو زبان سے ٹچ کرنے والی بات ہے. مس کا مطلب ہے کسی سے بھی ہاتھ سے ٹچ کرو یا زبان سے ٹچ کرو. جب ہم ہاتھ سے ٹچ کریں گے تو مس بالید ہوگا، ہاتھ سے ہوگا. جب ہم پڑھیں گے تو قرآن کو مس کریں گے ہم اپنی زبان سے. تو قرآن کو مس نہیں کر سکتے پاک لوگوں کے سوا کوئی اور. تو یہ جو حکم ہے اس حکم کا کیا بنے گا؟ تو نیک نیتی کی وجہ سے کسی قرآن اور حدیث کے صاف اور صریح حکم کی خلاف ورزی جائز نہیں ہوتی. اب جیسے یہ اس حکم میں تبدیلی کی گئی، کل کو کوئی نماز کا شوقین اٹھ کے یہ بولے گا کہ اس حالت میں پھر نماز بھی جائز ہونا چاہیے ان کے لیے، حالانکہ اس حالت میں تو نماز بھی معاف ہے ان کی. اس حالت میں تو وہ روزہ بھی نہیں رکھ سکتی، رکھیں گے تو ادا نہیں ہوگا، نماز پڑھیں گے تو ادا نہیں ہوگی، وضو کریں گے تو کنسیڈر نہیں ہوگا. یہ صورت حال ہے. اب جب صورت حال یہی ہے کہ اس کا اعتبار ہی نہیں کیا گیا، اور پیدا کرنے والے نے، شریعت بھیجنے والے، قرآن اتارنے والے نے یہ کہا کہ ان دنوں میں تم کو یہ کام نہیں کرنا ہے، تو ان سے بڑھ کے ان سے ایک قدم آگے چلنے کی ہمیں ضرورت ہے ہی نہیں. جہاں انہوں نے کہا کہ اس حالت میں قرآن کو پڑھنا بھی ہے اور چھونا بھی ہے، ان حالت میں پڑھنا بھی ہے اور چھونا بھی ہے. جس حالت میں کہا کہ اب قرآن کو نہ چھونا ہے نہ پڑھنا ہے، اس حالت میں اسے احتیاط کرنا ہے. 3 اوقات نماز کے مکروہ ہیں، ایسے مکروہ ہیں کہ آپ نماز پڑھ ہی نہیں سکتے. جب سورج نکل رہا ہے، جب سورج بالکل سر پہ ہے، جب سورج ڈوب رہا ہے، ان حالتوں میں کوئی بندہ نماز پڑھنے کی اجازت چاہے، آپ بولیں گے جائز نہیں ہے. دنیا کا کوئی بھی مولانا بولے گا جائز نہیں ہے، مفتی صاحب بولیں گے جائز نہیں ہے. نماز سے تھوڑا ہی روکا جا رہا. اس وقت میں اگر نماز پڑھیں گے تو جو خرابی لازم آنے والی ہے، اس سے جو خرابی پیدا ہونے والی ہے، اس سے بچایا جا رہا. اسے کون سی خرابی لازم آتی؟ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت مخلوق کی پرستش کرنے والے مخلوق کی پرستش کرتے ہیں. اس وقت شیطان وہ سورج کے دونوں سینگوں کے بیچ میں ٹھہرا ہوا ہوتا ہے. تم اگر عبادت کرو گے تو وہ اس کی عبادت کرنے جیسی شکل بن جائے گی. اسے ہم تم کو بچانا چاہتے ہیں. तो हम उन मसलहतों को और उन हिकमतों को नहीं जानते, इस बुनियाद पे हम अपनी हिकमतों का तुक्का लगा लेते हैं अहकाम के साथ में। ये तुक्का लगाना नहीं है, कुरान और हदीस के हुक्म के साथ तुक्का लगाना नहीं है। हुक्म को बगैर तुक्कों के मान लेना है, बगैर मसलहत के मान लेना है। अगर किसी जगह घर में बाप बेटा बैठे हुए हों, दस्तर पे बैठे हुए खाना खा रहे हों, बाप अगर बेटे को ये बोले, कह रहे उठ जाओ फौरी वहां से, इधर आ जाओ, और बेटा उठ करके आ जाए, तो ये होगी बाप के हुक्म की तामील। और अगर बाप बोले अरे वहां पे बिच्छू है वहां से उठो, और बेटा वहां से उठा सांप के आने की वजह से, बिच्छू के आने की वजह से, तो अब वो बाप के हुक्म की तामील में नहीं उठा, वो बिच्छू के असर और जहर से बचने के लिए उठा। दोनों में फर्क है। इस फर्क को हमेशा जहन में रखना है कि जब हम हिकमतों का सवाल करते हैं या हमारा जहन हमसे चाहता है कि हमें इस हुक्म की हिकमत पता चले, मसलहत पता चले, फ़ायदा पता चले, लिम पता चले कि ऐसा हुक्म क्यों दिया गया, तो वो क्यों दिया गया का सवाल हम जान के क्या कर लेंगे? कुछ भी नहीं। क्यों दिया गया का सवाल जान के सिवाय दिल की तसल्ली के और कुछ कर ही नहीं सकते। तो ईमान तो दिल को तसल्ली देने का नाम तो नहीं है, इस्लाम दिल को तसल्ली देने का नाम तो नहीं है। इस्लाम और ईमान नाम है अल्लाह के हुक्मों को बगैर देखे अल्लाह को और उनके हुक्मों को मानना। इस्लाम नाम है बगैर देखे अल्लाह के हुक्मों पे कुर्बान हो जाना। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो किस्सा ज़बह का है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि वो बेटे को ज़बह कर रहे हैं, तो बेटे से पूछा मैंने ऐसा ख्वाब देखा। अम्बिया का ख्वाब भी वही होता, वो समझ गए कि हुक्म मिल रहा है बेटे को ज़बह करें। बेटे से उसका इजहार किया तो वो भी नबी की औलाद थी, तो उन्होंने कहा कि आपको जो हुक्म दिया जा रहा करिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनको लेकर के गए और वहां पे हजरत इस्माइल को लिटा डाले और फिर उनके गर्दन और गले के ऊपर छुरी या जो भी काटने वाला आला था वो रखा। तो वो जो सीन है, उस सीन को कुरान ने क्या कहा उस सीन के लिए कि इब्राहिम इस्माइल अलैहिस्सलाम लेटे हुए हैं और उनके गले पर छुरी रखी हुई है हजरत इब्राहिम के हाथ की, इस मौके के लिए कुरान बोलता है फलम्मा असलमा, जब वो इस्लाम लाए, जब उन्होंने हमारे हुक्म की फरमाबरदारी कर दी। तो ऐसा हुक्म के आगे सरेंडर करने का नाम इस्लाम है। अब वहां ये थोड़ा ही पूछा गया था बेटे को ज़बह कर दो, तो बेटे को ज़बह करने का हुक्म मिला तो वहां क्यों नहीं पूछा जा रहा? यहाँ पे कुर्बानी करो बोलते बोला जा रहा, अरे उम्मत कट रही या कुर्बानी में गोश्त में खून के बहाने में जानवरों के काटने में, इसमें जो है ना लोग लगे हुए हैं, पैसा बहाया जा रहा, ज़ाय किया जा रहा। औलाद के काटने का हुक्म मिला तो भी क्यों का सवाल नहीं हुआ उधर, और इधर जानवर काटने के लिए बोला जा रहा तो क्यों का सवाल है? बनी इसराइलियत आ गई हमारे अंदर, मुसलमानों के अंदर। कहते मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था ना कि मक्तूल का कातिल को मालूम करना है जो तुम्हारे कौम में हो गया है, कातिल का पता लगाना है तो एक गाय ज़बह करो। बोले अतत्तखिज़ूना हुज़ूआ, मजाक कर रहे हैं क्या? कल आऊज़ु बिल्लाह या नकून मिनल जाहिलीन, अल्लाह के हुक्मों को लेके मैं ऐसा मजाक करूं? ये काम जाहिल करता है, नबी जाहिल हो सकता है माज़ल्ला? तो वो जो क्यों का सवाल है या नबी से हुक्म आने के बाद में इस किस्म का सवाल है, ये ज़हनियत कहाँ से आई है? वहीं से आई है। अल्लाह पाक हमारी हिफाजत फरमाए। तो वो जो मसलहत का सवाल है उसको छोड़ देना है। बात कहाँ से चली थी, भूल गया। छू नहीं सकते कुरान करीम को, छू नहीं सकते जब तक नापाक हैं, चाहे वो 3 दिन की नापाकी हो, 5 दिन की हो, 7 दिन की हो, 10 दिन की हो, जितने दिनों की हो, जब हुक्म है नहीं छू सकते तो नहीं छूना है। उसी हुक्म को पूरा करने में सवाब है। और अगर हुक्म को तोड़ के सुबह से लेके शाम तक पूरे 24 घंटे कुरान को पकड़ के वजू करके बैठेंगे, वसूल करके बैठेंगे, सवाब तो एक तरफ, गुना मिलेगा। हुक्म की खासियत ये होती है कि अगर आप हुक्म तोड़ेंगे तो चाहे उसके जरिए से दूसरे वक्तों की नेकी अदा हो रही है, इस वक्त तो गुना हो रहा है, यही होगा। तो कुरान करीम जब भी कोई पढ़ना चाहता है या पढ़ना चाहती है तो उसके लिए हुक्म है कि वो पाकी हासिल करे। पाकी हासिल करने के लिए एक जिस्मानी पाकी है जो गुस्ल और वुजू की सूरत में होती है, जिसकी कुछ तफसील अभी सामने आई। और दूसरी जो है, दूसरा जो पाकि हासिल करना होता है वो तआव्वुज़ की सूरत में, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम की सूरत में, कि मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। जाहिरी पाकी के लिए वुजू का हुक्म दिया गया, बातिनी पाकी के लिए इस कलिमे को जबान से निकालना है कि दिल और जबान दोनों थोड़े से पाक हो जाएं, कल्ब और रूह दोनों बातिन इसके जरिए से पाक हो जाए, फिर उसके बाद पाक कलाम जबान पे आए। अऊज़ुबिल्लाह जब पढ़ा जाता है तो फिर उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के पढ़ने का भी हुक्म है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हदीस शरीफ में आया है कि हर अहम काम के शुरू में पढ़ना चाहिए, हर अहम काम के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए। कुरान करीम की तिलावत भी एक अहम काम है तो उसके शुरू में भी ये काम होना चाहिए। हत्ता कि यहाँ तक आया है कुरान के शुरू में तो पढ़ना ही है। आप अलैहिस्सलाम ने साफ तौर पे फरमाया जब दरवाज़ा लगाने लगो रात को अपने घर का तब भी बिस्मिल्लाह पढ़ के लगाया करो, जब चिराग गुल करना पड़े यानी लाइट बंद करनी पड़े आज के हिसाब से तो उस वक्त भी बिस्मिल्लाह पढ़ के किया करो, और जब अपने बर्तनों को ढांकने की नौबत आए तो उस वक्त भी बिस्मिल्लाह पढ़ के किया करो कि शैतान इन चीज़ों में फिर मुदाखलत नहीं करता। हम जो भी काम कर रहे हैं अहम काम है तो और मुबाह काम है उस काम के करने में अगर बिस्मिल्लाह पढ़ लेंगे तो हमारे लिए ये बात हासिल हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का जुमला बड़ा छोटा जुमला है लेकिन इसके अंदर बहुत बड़ी दुनिया छुपी हुई है। हत्ता के फरमाया है उलमाए किराम ने हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से मनकूल है कि अल्लाह ताला ने 104 बड़ी और छोटी हर किस्म की किताबें उतारी हैं। टोटल किताबें 104 हैं जिसमें सहीफे भी शामिल हैं और जिसमें बड़ी किताबें तौरा ज़बूर इंजील और कुरान भी दाखिल हैं। तो ये सारे 104 तक उतारे गए हैं। इन चारों का इन 104 का खुलासा वो चार में है, तौरा ज़बूर इंजील और कुरान में है। इंजील और ज़बून और कुरान का खुलासा वो कुरान की एक तरतीब है, वो 200 आयत वाली सूरतें, 200 आयत से कम वाली, 100 से ऊपर वाली सूरतें, 100 के अंदर वाली सूरतें, मुफस्सल फिर वगैरह वगैरह। तो ये जो मुफस्सल बल्कि एक किस्म है कुरान की, मुफस्सला जिसको बोला जाता है सूरह काफ से लेकर के आखिर सूरत तक, इसके अंदर पूरे कुरान का खुलासा है। ये पूरे कुरान का खुलासा फिर सूरह फातिहा के अंदर है, सूरह मुफस्सल का खुलासा सूरह फातिहा के अंदर है, सूरह फातिहा का खुलासा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से यह तफसील मनकूल है। इसके पीछे असल में एक सोच है, वो सोच ये है कि जब भी कोई काम किया जा रहा, अब जैसे बच्चा कुछ बोलना सीखता है तो समझदार और मुसलमान घराने के लोग उसको लफ्ज़ अल्लाह बोलना सिखाते हैं, लफ्ज़ बोलना सीखे, और लफ्ज़ अल्लाह सीख ले जुमला बोलना सीखे तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सिखाते हैं, और जब खाने की दुआ सीखने के काबिल हो जाए तो दुआओं में सबसे पहले बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह सिखाते। तो जो सबसे पहली दुआ खाने की सिखाई जाती है, दूसरी दुआएं सिखाई जाती है, इसके अंदर गौर करें, ये सिर्फ रटा देने वाला काम नहीं है, ये जहन को एक काम के एक तरफ चलाने वाला काम है, जहन को और दिल को एक तरफ लगाने वाला काम है। वो ये है कि ये जो प्लेट में मेरे खाना सालन आके रखा हुआ है और मेरे हाथ में ये जो लुकमा मौजूद है, इस लुकमे के पीछे ज़मीन की आसमान की खलाई और फिजाई हजारों ने लाखों मखलूकात का दखल है एक एक लुकमे के पीछे। तो वो जो हजारों मखलूकात का हाथ है इसके पीछे और उसकी फिर उसके जरिए से ये चीज मेरे तक पहुंची है, उसको उस काम में लगाने वाला और मुझ तक इसका पहुंचाने वाला, हर एक से हर काम अपने वक्त पे करवाने वाला और मुझे अपने हाथ में लुकमा देने वाला, ये कोई और नहीं है, वो सिर्फ अल्लाह की जात है। हर काम में सवारी पे सवार हो रहे हैं तो उसके पीछे यही सोच है, घर में दाखिल हो रहे हैं, दाखिल होना एक मुस्तकिल काम है, घर से निकलना एक मुस्तकिल काम है, मस्जिद में आना एक मुस्तकिल काम है, मस्जिद से निकलना एक मुस्तकिल काम है, वॉशरूम जाना एक मुस्तकिल काम है। तो हर मौके से ये सिखाया गया है और उसमें यही जहन चलाया जा रहा है कि भाई इस मौके से कोई एक चीज़ तुम्हारे लिए नहीं है, सैकड़ों नहीं हज़ारों चीज़ें तुम्हारे साथ लगी हुई हैं और उन हज़ारों चीज़ों के फ़ायदों को के मिलने से तुमको एक फ़ायदा हासिल हो रहा है, दिखने में एक फ़ायदा है और हकीकत के एतबार से सैकड़ों फ़ायदे हैं। अब जो बंदा खाना खा रहा है, लुकमा उठा रहा है, एक लुकमे के उठाने के बाद सारा बदन उसके हजम करने के अंदर और बाकी आगे की कार्रवाई के अंदर शामिल है, एक एक बदन की यानी एक इंसान के एक लुकमे के पीछे जो कार्रवाई है पहले भी और बाद में भी वो हजारों से कम में होती ही नहीं। वो हर लुकमे से पहले और हर लुकमे के बाद जो कार्रवाई हो रही अल्लाह के हुक्म से हो रही, अल्लाह के करवाने से हो रही, हमको इस शऊर के साथ में ये जुमले बोलने का है। और जब इस शऊर के साथ बोला जाता है तो फिर इसके असरात हमारे खाने में भी आते हैं और जबान में भी आते हैं। बस दफ़ा बुजुर्गों के वाक़यात में ये चीज़ें सुनने को पढ़ने को मिलती हैं कि उन्होंने दुआओं में कुछ लंबा चौड़ा नहीं लिखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के आगे कर दिया और फिर जो है ना उसके ज़रिए से मकसद हासिल हो गया, बीमारों को शिफा मिल गई, ज़रूरतें पूरी हो गई, कर्ज़े अदा हो गए, कोई मुश्किल थी वो हल हो गई, दूर हो गई। तो वो जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाम खुदा की बरकत तो है ही उसके अंदर, लेकिन बुजुर्ग की तरफ से उनके वास्ते से जो चीज़ आई है वो क्या है, वो उनका यकीन ही तो है। और वो यकीन कैसे ज़िंदा हुआ या उसमें असर कैसे पैदा हुआ, वो इसी सोच और फिक्र की वजह से पैदा हुआ। जब ये सोच जिंदा होती है, जिंदा होने का मतलब होता है कि जब ये बोला जा रहा है तो इस शऊर से बोला जाना, इस सोच से बोला जाना। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हर काम से पहले हमको करना है, बज़ाहिर हमारे लिए जो अहम है उनमें भी, जो हमारे लिए अहम नहीं है उनमें भी। अलबत्ता जो हराम काम है उन हराम कामों से पहले इसको बोलना बड़ी खतरनाक, खतरे की अलामत है। जैसे कोई बंदा शराब पीते हुए ये जुमला बोल जाए तो ये बड़ी डरने की बात है। शराब पीते हराम काम करते हुए कोई बिस्मिल्लाह पढ़ जाए तो ये बिस्मिल्लाह की तौहीन होती है। बिस्मिल्लाह आयत कुरानी है और कुरानी आयत की तौहीन के बाद कोई बंदा मुसलमान नहीं रह सकता, तो इस्लाम से बाहर कर देने वाली चीज़ है। तो जो भी हराम काम होगा और उससे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ा जाएगा तो वो थोड़ा सा डरने वाली चीज़ होती है। अल्लाह पाक हम सब की उसे हिफाजत फरमाए। ये जो बिस्मिल्लाह है कुरान के नमाज के अंदर भी पढ़ा जाता है, नमाज के बाहर भी पढ़ा जाता है और उसके अंदर अहकाम के हवाले से थोड़ी सी तफसील है। फिर कुरान के अंदर भी ये मजकूर है तो कुरान में इसकी क्या नौईयत है, ये जहाँ जहाँ पर भी हर सूरे के दरमियान में लिखा हुआ है वहाँ पर ये कुरान का हिस्सा है या नहीं है, फिर सूरत का हिस्सा है या नहीं है, इसको पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है, फिर इसको नमाज में पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है, ये सारी तफसीलात हैं। तो उसको मुख्तसर अंदाज में ये कि कुरान करीम में सूरे नमल के अंदर जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आया वो आयत का और सूरत का हिस्सा, वो आयत का भी हिस्सा है क्योंकि वो दरमियान आयत में आया है और वो सूरे नमल का भी हिस्सा है। लेकिन हर दो सूरतों के बीच में या हर सूरत के शुरू में जो बिस्मिल्लाह आया हुआ है वो उस सूरत का हिस्सा नहीं है अलबत्ता कुरान की आयत है, उस सूरत का हिस्सा नहीं है अलबत्ता कुरान की आयत है। तो ये बताने का मकसद क्या है, ये बताने से एक जगह बहुत असर पड़ता है। वो असर ये है कि जैसे अब तरावी में इमाम साहब पूरा कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं तो अगर वो हर सूरत का हिस्सा है तो इमाम साहब को जैसे बाकी सूरत ज़ोर से पढ़ रहे हैं ये बिस्मिल्लाह भी ज़ोर से पढ़ना पड़ेगा, और अगर वो हर सूरत का हिस्सा नहीं है तो फिर सिर्फ सूरत पढ़ना पड़ेगा, बिस्मिल्लाह जोर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। ये फ़र्क वहाँ पे जाके पड़ता है। और नमाज जब हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले सना पढ़ते हैं, सना के बाद तावुज़ औज़ु बिल्लाह पढ़ते हैं, फिर उसके बाद बिस्मिल्लाह। तो पहली रकात में तावुज़ के बाद तावुज़ पढ़ना भी मसनून है और ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना भी सुन्नत है। सूरह फातिहा ख़त्म होने के बाद कोई सूरत मिलाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ने को उलमा ने सुन्नत करार नहीं दिया क्योंकि साबित नहीं है, लेकिन अगर कोई पढ़ ले तो गुनाह भी नहीं और मकरूह भी नहीं, नमाज में नेकी के एतबार से कोई कमी नहीं आएगी। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में तीन सिफात का, अल्लाह ताला के तीन नामों का जिक्र है, एक लफ्ज़ अल्लाह का, एक लफ्ज़ रहमान का और एक लफ्ज़ रहीम का। लफ्ज़ अल्लाह, अल्लाह क्या है, अगर कोई पूछे कि अल्लाह की तारीफ़ करो, तुम जिस खुदा को मानते हो जिसको अल्लाह का नाम देते हो तो उसकी तारीफ़ करो, बताओ उसका उसकी क्या चीज़ है, तो उलमा ने लिखा है कि अल्लाह नाम है अल्लाह आलमुन लिज़ातिल वाजिबिल वजूद अलमुस्तजमिअ लिजमीअ सिफातिल कमाल अलमुनज़्ज़ह अनिन नक़्सि वज़्ज़वाल। अल्लाह ऐसी हस्ती का नाम है जो खुद से मौजूद है, उसका कोई खालिक नहीं है, ना उसका कोई बाप है, ना उसका कोई बेटा है, ना उसका कोई खालिक है, वो खुद से मौजूद है। और वजूद, मौजूद होना और ज़िंदा होना वो उसके लिए ज़रूरी है, कभी उस पर अदम और मौत और फना तारी नहीं हो सकता, ना कभी था ना कभी आइंदा हो सकेगा। ऐसी ज़ात ज़ाते वाजिबुल वजूद कहलाती। अलमुस्तजमे अलजमे सिफातिल कमाल, जो कमाल की सिफत भी इस दुनिया में पाई जाती है वो अल्लाह के अंदर मौजूद है, वो अल्लाह से मुत्तसिफ है, जो भी कमाल है वो अल्लाह के अल्लाह के लिए साबित है। अलमुनज़्ज़ह अनिन नक़्सि वज़्ज़वाल, और जो भी अल्लाह के शाया निशान नहीं है अल्लाह पाक उससे बरी और पाक है। तो नाशाया सिफात से अल्लाह पाक पाक हैं, हर कमाल से अल्लाह मुत्तसिफ हैं और वजूद में हक ताला वाजिब हैं। ये तीन चीज़ें अल्लाह की ज़ात के लिए तारीफ़ के तारुफ के तौर पे बोली जाती हैं। एक, अल्लाह का वजूद उनका अपना है, दूसरे, हर कमाल उनके अंदर है, और तीसरे, कोई भी ऐसी चीज़ जो उनकी ज़ात के लिए मुनासिब नहीं है वो उनके लिए नहीं है। जैसे इंसानों के लिए बीमार पड़ जाए तो खाना खाया नहीं जाता, तो खाने का नहीं खाया जाना ऐब है, यानी बीमारी है। शादी हो जाए लेकिन औलाद ना हो तो लोग थोड़ा सा फिक्रमंद हो जाते हैं, तो औलाद का नहीं होना ये ऐब है और औलाद का हो जाना ये उनके लिए कमाल है, इंसानियत के लिए कमाल है। लेकिन अल्लाह पाक के लिए ना तो खाना खाना कमाल है, ना खाना नहीं खाना कमाल है, रोज़े रखना कमाल है, और ना अल्लाह पाक के लिए शादी करना कमाल है, ना औलाद होना कमाल है, ना इस माना में जिस माना में इंसानों के लिए ऐब है उस माना में उनके लिए ऐब है। अल्लाह के हिसाब से उनके शायान शान, उनकी शान के हिसाब से जो चीज़ कमाल की है वो उनके लिए साबित है, और उनकी शान के हिसाब से जो चीज़ उनकी ज़ात में नहीं होना चाहिए वो उनमें नहीं है। अब एक चीज़ हमारे अंदर कमाल है तो ज़रूरी नहीं है वो उनके अंदर भी होना, वो उनके लिए ऐब हो सकती। जैसे हमारे लिए साहिब औलाद होना कमाल है, इंसानों के लिए कमाल है कि ये साहिब औलाद है, لیکن اللہ کے لیے صاحب اولاد ہونا بہت بڑا عیب ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ کے لیے صاحب اولاد ہونا گالی سے کم نہیں ہے. حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کو یہ کہنا کہ وہ اولاد والے ہیں وہ گالی سے کم نہیں ہے, یہ کہنا گالی دینے کے برابر ہے. الرحمن دوسری صفت ہے, رحمان کا مطلب ہے رحم کرنے والا, اور الرحیم تیسری صفت ہے, اس کا مطلب ہی رحم کرنے والا. دونوں بظاہر سیم لگتے ہیں لیکن ان میں بہت فرق ہے. رحمان کا مطلب ہے جس کی رحمت عام ہے, اور رحیم کا مطلب ہے جس کی رحمت کامل ہے. دنیا کے اندر اللہ کے ماننے والے بھی ہیں اور اللہ کے نہیں ماننے والے بھی ہیں, لیکن سورج سب پہ چمکتا, بارش سب کے لیے ہے, دن رات کا نظام سب کے لیے ہے, اور اناج کا اگنا, غلوں کا نکلنا, پھلوں کا پیدا ہونا, اور غذاؤں کا لوگوں کے ہاتھوں تک پیٹوں تک پہنچنا, یہ سارا اللہ کی طرف سے ہے اور سب کے لیے ہے. یہاں پر اللہ پاک نے اس میں کوئی تقسیم نہیں کی ہے کہ جو میری مانے گا اس کو میں رزق دوں گا, جو میری بات نہیں مانے گا اس کو میں رزق نہیں دوں گا, اس کو رزق محروم رکھیں گا, یہ تقسیم نہیں ہے. تو یہ رحمت کی بنیاد پر, رحمانیت والا جو رحم ہے اس بنیاد پہ یہ تقسیم سب کو, یہ رزق سب کو مل رہا ہے. اور جب قیامت کا دن آئے گا تو اس وقت ایک اللہ کے قہر کا مظہر ہے, یعنی جہنم ہے, اللہ کے غضب کا مظہر ہے وہ جہنم ہے, اور ایک اللہ کی رحمت کا مظہر ہے جو جنت ہے. اس وقت میں اللہ کی رحمت کاملہ کا وہ ظاہر ہوگی صرف مومنین کے واسطے. تو اس معنی میں اللہ پاک رحیم ہے. ایک ہے رحمت کا عام ہونا, اس معنی میں اللہ پاک رحمان ہے, اور ایک ہے اللہ کی رحمت کا کامل ہونا کہ جس کے بعد کسی اور نعمت کی ضرورت باقی نہ رہے. جنت میں ایسے ہی ہوگا کہ کسی نعمت کی ضرورت باقی نہیں رہے گی, نعمت کامل ہو جائے گی. تو اس معنی میں اللہ پاک رحیم ہے. اور انسان کے اوپر بھی تین احوال آتے ہیں. ایک, جب وہ اپنے وجود کا محتاج ہوتا کہ وہ نہیں تھا پیدا ہوا, تو نہیں تھا پیدا ہونے میں اللہ کا محتاج ہے. پھر اس دنیا میں آ جانے کے بعد دنیا میں موت تک اپنے آپ کو سروائیو کرنے کے واسطے اپنی بقا میں وہ اللہ کا محتاج ہے. پھر اس کے بعد آخرت میں, یہ دنیا میں دار العمل میں جو کچھ کیا اس کا ثمرہ اور اس کا پھل آخرت میں دیکھنے کے واسطے وہ اللہ کا محتاج ہے. تو خالقیت کے لحاظ سے, لفظ اللہ خالق کے معنی میں ہوتا ہے یہاں پر, خالقیت کے لحاظ سے, وجود دینے اور پیدا کرنے کے لحاظ سے ایک صفت یعنی لفظ اللہ کو ذکر کیا گیا. اس دنیا میں آ جانے کے بعد یہاں کی ضرورتوں کی تکمیل کے واسطے اللہ کی صفت رحمانیت کی طرف وہ صفت اس کے اندر لائی گئی, اور آخرت میں جب یہ اس کا ان چیزوں کا ثمرہ دیکھے گا, یہاں جو کچھ کر کے گیا ہے اس لحاظ سے وہ رحیم کی صفت لائی گئی. اس کے بعد ہے یہ تعوض ہو جاتا ہے اور تسمیہ ہو جاتا ہے, پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ شروع ہوتا ہے. سورت فاتحہ جیسا کہ ابھی ذکر کیا گیا ایسی صورت ہے کہ جس کے اندر سارے قرآن کا خلاصہ آیا ہے. وہ کیسے کہ قرآن کے تین ٹاپک بنیادی ہیں, ایک توحید اللہ کی وحدانیت, اور دوسرے رسالت یعنی اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے واسطے جو ایک سیٹ اپ بنایا ہوا ہے پیغمبروں کے بھیجنے کا, وہ سیٹ اپ رسالت, اور تیسرے یہ دنیا دار العمل ہے, تو یہاں پہ جو کچھ کر کے آئے گا تو اس کی جزا آخرت میں دیکھے گا آخرت. یہ تین چیزیں بنیادی عقیدے ہیں اسلام کے, اور ٹاپک ہیں بنیادی قرآن کا. یہ تینوں اس صورت کے اندر خلاصے کے طور پر موجود ہیں. آگے جتنی تفصیل ہے وہ اس سے جڑی ہوئی ہے. اس کو پھیلاؤ تو کہا جاتا ہے کہ قرآن بنتا ہے, قرآن کو سمیٹو تو وہ سورہ فاتحہ بنتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ جیسی صورت نہ تورات میں تھی, نہ زبور میں تھی, نہ انجیل میں. یعنی یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اگر ہم کسی عیسائی سے بات کر رہے ہیں, کسی یہودی سے بات کر رہے ہیں, تو اس کو لاجواب کرنے کے لیے یا اس کو ہم اپنی بات کا قائل کرنے کے لیے صرف یہی ایک بات کافی ہے کہ سورہ فاتحہ جیسی صورت دکھاؤ. اصل میں یہ ہے کہ بائبل جو ان کے ٹیسٹمنٹ نیو والے ہیں یا اولڈ والے ہیں ان کو دیکھیں تو اس کے اندر جو اللہ کی تعریف جس حساب سے کی گئی ہے اور قرآن حدیث شریف کے اندر سورہ فاتحہ میں جس طرح سے کی گئی ہے اس کو کمپیئر کر کے دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا. دونوں میں کوئی توازن ہی نہیں ہے. ایسی خوبیوں والا, ایسی کمال والی, ایسی خوبصورت اور اس قدر اچھی دعائیں اس کے اندر ہے, اللہ کی حمد اس کے اندر ہے, اپنی عبدیت کا اظہار اس کے اندر ہے, اور ان کے اندر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. تو یہ ایسی صفت ہے سورہ فاتحہ کی کہ اس جیسی صورت نہ تورات میں, نہ زبور میں, نہ انجیل میں, اس سے آگے بڑھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ فاتحہ جیسی صورت خود قرآن میں کوئی دوسری نہیں ہے. سورہ فاتحہ جیسی صورت خود قرآن میں کوئی دوسری نہیں ہے. وہ دوسری کی ہر ایک کی اپنی اپنی شان ہے, لیکن اس کی جو شان ہے وہ کسی دوسری صورت میں آپ کو نہیں ملے. اس صورت کے بے شمار نام ہیں, بہت سے نام ہیں. اس میں سے ایک صورت الفاتحہ ہے. فاتحہ کا مطلب شروع کرنے والی, کیونکہ اس کے ذریعے سے قرآن کریم کا آغاز ہو رہا ہے اس بنیاد پہ. دوسرے یہ کہ آپ کو پتا ہے کہ قرآن کریم کا نزول جو ہوا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترنا شروع ہوا تو وہ سب سے پہلے آیتوں کی صورت میں ہوا. سب جانتے ہیں کہ سورہ فاتحہ سورہ علق کی 5 آیتیں ابتدائی جو ہیں وہ سب سے پہلے نازل ہوئی, اقرأ بسم ربک الذی خلق. پوری کی پوری سورت جو سب سے پہلے نازل ہوئی ایک اعتبار سے وہ سورہ فاتحہ ہے, یعنی قول کے مطابق وہ سورہ فاتحہ ہے. تو پوری سورت کے نازل ہونے کے اعتبار سے سب سے پہلے کون سی سورت نازل ہوئی؟ سورہ فاتحہ. اور معنی کیا ہے شروع کرنے والی, نزول کے کامل نزول کو شروع کرنے والی سورہ فاتحہ ہے, قرآن کو شروع کرنے والی سورہ فاتحہ ہے, نماز کے اندر سب سے پہلے پڑھے جانے والی سورہ فاتحہ ہے. تو شروعات کا معنی اور مفہوم اس میں پایا جاتا ہے. اس کو سورۃ الشفا بھی کہتے ہیں, شفا والی سورت ہے یہ, یعنی بیمار چاہے وہ جسمانی ہو یا روحانی ہو وہ اس کو پڑھ کے اگر پھونکتے ہیں تو اس کے ذریعے سے اللہ پاک بے شمار مواقع پر شفا عطا فرما دیتے ہیں. روحانیت کا علاج بھی اس کے اندر ہوتا ہے, جسمانیت کا علاج بھی اس کے اندر ہوتا ہے. ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ ایک جگہ ایک قبیلے کی کسی لڑکی کو سانپ یا بچھو کاٹ گیا تو اس قبیلے والوں نے کسی سے, صحابہ کا ایک پورا مجمع تھا, ان سے آ کے کہا کہ تم میں کوئی یہ رقیہ دم کرنے والا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں دم کروں گا. پھر ایک صحابی گئے, انہوں نے دم کیا, سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونکا اور اس کا اثر ختم ہو گیا, زہر سے اس کو نجات مل گئی. پھر ان لوگوں نے ان کی دعوت کی, بکریاں وغیرہ دی, اس میں سے ان صحابی نے بھی کھایا, حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا حصہ منگایا. تو یہ ہوا سورہ شفا. جس قدر کثرت سے کوئی سورہ یا کوئی آیت پڑھی جاتی ہے اتنا اثر اس سورت کے پڑھنے میں آتا ہے. اب جیسے سورہ فاتحہ ہے, ہر سورت کی یا ہر عمل کی ایک زکات ہوتی ہے, وہ زکات دینے سے اس عمل میں ایک طاقت آتی ہے, ایک جان آتی ہے, ایک اثر پیدا ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے, بعض بزرگان دین 70,000 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ پڑھواتے ہیں کہ کیا کرنا ہے, تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو. کتنی دفعہ پڑھو؟ 70,000 مرتبہ پڑھو, پھر اس کے بعد اطلاع دینا, وہ ہو گیا. تو جو کام اتنی دفعہ کیا جائے گا تو اس کا اثر پھر زبان میں بھی آئے گا اور اس عمل کے اندر بھی آئے گا. ایسے ہی سورہ فاتحہ کا اور دوسری صورتوں اور دوسرے اعمال کا معاملہ ہے, وہ کثرت سے اگر کیے جائیں اور اتنی کثرت سے کیے جائیں تو پھر وہ اپنا اثر دکھاتے ہیں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا کہ ہم کو سر میں درد ہو رہا, پیٹ میں درد ہو رہا, ہم پڑھ کے پھونک لیے کچھ بھی نہیں ہوا, یا کسی سے پڑھوا لیے کچھ بھی نہیں ہوا. تو وہ کیوں ہوتا ہے؟ وہ پڑھنے کا فرق ہو جاتا, پڑھنے والے کا فرق ہو جاتا. اور بعض دفعہ پڑھنے والا بھی اثر رکھتا اور قرآن بھی اپنا اثر رکھتا لیکن اللہ کو منظور نہیں ہوتا, اس بنیاد پہ چیز ظاہر نہیں ہوتی. تو یہ سورۃ الشفا ہے. تیسرے یہ سورہ ام الکتاب ہے, اس کا ایک نام ام الکتاب, یعنی کتاب سے مراد قرآن ہے, اور ام کے معنی ہے ماں, یعنی قرآن کی ماں. کیونکہ خلاصے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ جڑ ہے, اور ام کو جڑ بھی کہتے ہیں, ماں بھی کہتے ہیں, اس لحاظ سے اس کو سورۃ ام الکتاب بھی کہتے ہیں. اس کو سورۃ الصلاۃ بھی کہتے ہیں, نماز کی سورت, نماز میں پڑھی جانے والی سورت. ظاہر ہے سب کے سب جانتے ہیں کہ ہر مسلمان جو بھی نماز پڑھتا ہے سورہ فاتحہ کو جانتا ہے اور پڑھتا ہے. البتہ اس میں ایک تفصیل یہاں پہ ایک اختلافی مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ جب امام کے پیچھے پڑھ رہے ہوں تو پھر اس کو پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے, پڑھنے تو کیوں اور نہیں پڑھے تو کیوں. اس حوالے سے جب چونکہ اختلافی کئی سارے مسائل آتے ہیں, ایک بنیادی بات یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے, یعنی ان کی ایک فکر یہ تھی کہ کسی بھی ایک ٹاپک پہ جو مختلف آیتیں یا مختلف حدیثیں آپ کو ملیں گی ان کا ایسا مطلب لیا جائے کہ وہ سب اپنی اپنی جگہ فٹ ہوتے چلے جائیں. یہ ان کی خاصیت ہے. اس کو بولتے ہیں جمیع ما فی الباب پہ عمل کرنا, ایک اصطلاح ہے محدثین کی, مطلب ایک بولنے کا ایک انداز تعبیر ہے. جیسے سمجھنے کے لیے یوں کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تھے تو وہ اپنے کاندھوں تک اپنے ہاتھ اٹھاتے تھے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھاتے تھے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ کانوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے. یہ تین روایتیں الگ الگ ہیں, کاندھے تو یہاں ہیں, کان کی لو یہاں ہے اور کان یہاں ہے, تو اس حساب میں تین روایتیں مختلف ہو گئی. اب حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہاتھوں کو اس طرح رکھو کہ یہ نچلا حصہ کاندھوں تک جائے, انگوٹھے کان کی لو کو ٹچ کریں اور انگلیاں کان کے سرے تک پہنچیں. تینوں روایتوں کو انہوں نے اس طرح سے جمع کیا. تو وہ صرف اس باب میں اس ٹاپک میں انہوں نے ایسا کیا ایسا نہیں ہے, وہ پوری شریعت میں ایسا کرتے ہیں. مطلب انہوں نے جو شریعت کی تشریح کی ہے اس تمام تشریح کے اندر ان کی یہ فکر شامل ہوتی. تو اب یہ جو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے نہیں پڑھنے کا مسئلہ ہے, اس کے اندر بھی مختلف جو روایتیں ہیں میں وہ آپ کو پہلے مختصراً سنا دیتا ہوں. حدیث شریف میں آتا ہے ایک مضمون یہ कि जो बंदा सूरह फातिहा नहीं पढ़ेगा उसकी नमाज नहीं होगी। ला सलात इल्ला बिफातिहतिल किताब, फातिहतुल किताब के बगैर नमाज नहीं होती। ज़ाहिरन यही मफहूम निकलता है कि जो बंदा सूरह फातिहा नहीं पढ़ेगा उसकी नमाज नहीं होगी, चाहे इमाम के पीछे हो या इमाम के पीछे ना हो, दोनों सूरतों। दूसरा एक मजमून यह है कि मन कान लहु इमाम फ़क़िरातुल इमाम लहु क़िरा, जिस शख्स जो इमाम के पीछे है तो उसके लिए इमाम का पढ़ना काफ़ी है, जो इमाम के पीछे है उसके लिए इमाम का पढ़ना काफ़ी है, अगर इमाम पढ़ लेगा तो वो उसकी तरफ से भी शुमार होगा। तीसरी तरफ कुरान का हुक्म है, फ़क़्रा मा तयस्सरा मिनल कुरान, नमाज जब भी तुम पढ़ रहे हो तो कुरान का कुछ हिस्सा पढ़ना ज़रूरी है। चौथा कुरान की एक आयत है, वइदा क़ुरिअल कुरान फ़स्तमिउ लहु व अनसितु, जब कुरान पढ़ा जाए तो खामोश रहो और गौर से सुनो। अब इन सब चीज़ों को कैसे जमा किया जाएगा? जिन्होंने ये कहा कि इमाम के पीछे नमाज पढ़ें तो भी सूरह फातिहा पढ़ना चाहिए, बताइए इमाम पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मुक्तदी भी सारे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो वो कुरान का हुक्म तो छुड़ गया। वइदा क़ुरिअल कुरान फ़स्तमिउ लहु व अनसितु, कुरान पढ़ा जाए तो खामोश बैठो और गौर से सुनो वाला जो हुक्म है, अगर पढ़ेंगे तो खामोशी कहाँ होगी, और अगर पढ़ेंगे तो अपने पढ़ने की तरफ तवज्जो है तो कुरान सुनने की तरफ तवज्जो कहाँ हुई? तो ना तो इंसाफ का हुक्म पूरा हुआ खामोश रहने का, ना गौर से सुनने का हुक्म पूरा हुआ। और अगर यही मतलब था कि इमाम को भी पढ़ना है और मुक्तदी को भी पढ़ना है, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस का क्या मतलब है, मन काना लहू इमामुन फ़क़िरातुल इमामि लहू क़िरा, जिसका इमाम है इमाम का पढ़ना मुक्तदी का पढ़ना है, ये हदीस का क्या मतलब हुआ? फिर बेमाना हो जाएगी हदीस, इमाम को भी पढ़ना है और मुक्तदी को भी पढ़ना है, दोनों को पढ़ना है, तो फिर आप ये क्यों फरमा रहे हैं? अब इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह या अहनाफ जो इसकी तशरीह करते हैं वो गौर कर लें, वो ये कि नमाज के बाहर हो या नमाज के अंदर हो, जब कुरान पढ़ा जा रहा है तो खामोश बैठना है, जब कुरान पढ़ा जा रहा है तो खामोश बैठना है। फिर वो जो है ला सलात इल्ला बिफातिहतिल किताब, उस हदीस का क्या होगा कि सूरह फातिहा के बगैर नमाज नहीं होगी, मुक्तदी तो फातिहा नहीं पढ़ रहे, तो उसके लिए वो तीसरी हदीस है, इमाम का फातिहा पढ़ना मुक्तदी का फातिहा पढ़ना है, तो ये कैसे बोल सकेंगे कि मुक्तदी ने फातिहा नहीं पढ़ी, वो भी तो पढ़ा है ना इमाम की सूरत में, और इसीलिए तो इमाम को ये बोला गया अल इमामु ज़ामिनुन, इमाम जो है ना वो गारंटी लेने वाला होता है मुक्तदियों की नमाज की, उसकी नमाज ठीक तो बाकियों की भी ठीक, अगर उसकी गई तो सबकी गई। तो अगर इमाम नहीं पढ़ता है फिर ये हदीस सही है, हदीस सही है का मतलब ये है कि फिर ये हदीस यहाँ पे अप्लाई होगी, ला सलात इल्ला बिफातिहतिल किताब, यानी इमाम ने भी छोड़ दिया तो आप बोलेंगे कि ना मुक्तदियों की नमाज हुई ना इमाम की हुई, इमाम की तो इसलिए नहीं हुई कि उसको पढ़ना चाहिए था उसने नहीं पढ़ा, मुक्तदियों की इसलिए नहीं हुई कि इमाम से जुड़ी हुई थी, जब उसकी नहीं हुई तो इनकी भी नहीं हुई। जब इमाम के पीछे पढ़ेंगे तो मुक्तदी खामोश रहेंगे और इमाम पढ़ेगा, तो ये जो कुरान का हुक्म है ये भी पूरा हो जाएगा और हदीस के अंदर वो जो आए हैं अहकाम वो भी पूरे हो जाएंगे। जब मुनफरिद, जब कोई आदमी तनहा नमाज पढ़ा इमाम के पीछे नहीं पढ़ा, तब भी ये हदीस अप्लाई होगी ला सलात इल्ला बिफातिहतिल किताब वाली, कि उसको भी कुरान पढ़ना पड़ेगा क्योंकि अब वहाँ उसका इमाम नहीं है, अब वो किरात कर अब नमाज पढ़ता है बगैर सूरह फातिहा के, तो फिर सूरह फातिहा के बगैर नमाज नाकिस हो जाएगी, इस तरह से मफहूम निकाला जाएगा। तो हर जगह इख्तलाफी मसाइल के अंदर जहाँ रिवायात एक से ज़ायद कई मानों वाले आते हैं, देखिए बज़ाहिर ऐसा लगता है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ अहकाम दे दिए हैं, लेकिन वो जिनको अकल है वो समझ रहे हैं कि हर मौके के हिसाब से एक हुक्म है, वरना ज़ाहिरी तौर पर जिसका इल्म कर कम है और अकल कम है वो ये समझेगा कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी ऐसा फरमा रहे हैं कभी वैसा फरमा रहे हैं, एक तरफ तो ये फरमा रहे हैं कि सूरह फातिहा के बगैर नमाज नहीं, दूसरी तरफ ये फरमा रहे हैं कि इमाम पढ़ लिया तो भी काफ़ी है, तीसरी तरफ कुरान कह रहा है कि कुरान पढ़ लें तो खामोश बैठो। तो ये तीनों चीज़ें हमको चकरा देने वाली हैं, वो चकरा देने वाली कैफियत ख़त्म करने के वास्ते इल्म है और आलिम उलमा है, उसके वास्ते फुकाहा है, उसके वास्ते फिर जो है ना महक्कीकीन है, तहकीक है, इसी को तो बोला जाता है। तो सूरह सलात भी इस सूरत को कहा जाता है। आज के जहन में रखने के वास्ते जो बातें हमारे हमें जहन में रखने की है, सब ज़रा तवज्जो फरमाएं, नींद से बेदार हो जाएं। कुरान जब भी पढ़ें तो सबसे पहले दो हुक्म हमारी तरफ मुतवज्जे होते हैं, एक ज़ाहिरी नजासत से पाकी हासिल करना वुज़ू और गुसल की सूरत में, दूसरे बातिनी नजासत से दिल और रूह की गंदगी से अपने आप को पाक करना आऊज़ु बिल्लाह की सूरत में, और तीसरे अहम काम है इसलिए बिस्मिल्लाह पढ़ना, और न सिर्फ कुरान के शुरू तिलावत के शुरू में बल्कि हर काम के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना, हत्ता कि मियाँ बीवी जब एक दूसरे से मुलाकात करते हैं तो उससे पहले भी बिस्मिल्लाह का हुक्म है, और एक बार शादी के दिन नहीं बल्कि जब कभी ये मौका पेश आ रहा उस हर मौके के लिए ये हुक्म। खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, मस्जिद में आ रहे हैं, जा रहे हैं, वॉशरूम में दाखिल हो रहे हैं, वुजू कर रहे हैं, किसी को कोई चीज़ दे रहे हैं, किसी से कोई चीज़ ले रहे हैं, हर हर मौके से गाड़ी में बैठ रहे हैं, गाड़ी में से उतर रहे हैं, बाजार में दाखिल हो रहे हैं, बाजार में से निकल रहे हैं, कोई चीज़ खरीद रहे हैं, कोई चीज़ बेच रहे हैं, जॉब पे जा रहे हैं, जॉब से वापस आ रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, किसी की बात सुन रहे हैं, हर काम से बिस्मिल्लाह हो सकता है और पढ़ना चाहिए। और तीसरे सूरह फातिहा है। ये सूरह फातिहा ऐसी ख़ास चीज़ है कि ये हम दूसरों को इसके ज़रिए से चैलेंज दे सकते हैं। और इसके अंदर हुक्म के एतबार से जो चीज़ बताई गई, सूरह सलात यानी नमाज़ में इमाम के पीछे इसको पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, उस हवाले से कुछ बातें आज की गई, उसको जहन में रखें। अल्लाह ताला सही इल्म और अमल मकबूल की सबको तौफीक मरहमत फरमाए। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह।